उसके बाद हमारे पास आता है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। यहाँ पे मैं एक डिफरेंस क्लियर कर दूँ कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज़ अ टेक्निक इन विच वी आर गोइंग टू डिटर्मिन द एंटीजन, द अननोन एंटीजन बाय नोन एंटीबॉडीज, दैट इज़ द दोज एंटीबॉडीज विच आर हैव अ फ्लोरोक्रोम डाई ऑन देम टू डिटेक्ट द अननोन एंटीजन। बट इन इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस वी आर गोइंग टू डिटर्मिन द अननोन एंटीबॉडी ऑफ द पेशेंट बाई रिएक्टिंग विद अ नोन एंटीजन। दिस इज द मेन डिफरेंस। सो इन इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस वट वी आर गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू टेक द पेशेंट सीरम टू डिटेक्ट कि उसके सीरम के अंदर कौन से पैथोलॉजिकल ऑटो एंटीबॉडीज हैं जो बॉडी के टिश्यूज़ के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट्स यूरिन और जो ब्लिस्टर फ्लूइड है वो भी सैम्पल्स के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमनली हम पेशेंट का सीरम लेते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं और फिर उस सीरम को हम डाइल्यूट करते हैं इन अ सीरीज 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 एंड देन 1:100 तक इसको डाइल्यूट करते हैं, ताकि उसको फिर हम जो है ना प्रिपेयर जो हम टिश्यू सैंपल्स लेते हैं जिसकी एंटीजन्स द रिजेंबल्स द ह्यूमन एंटीजन्स, जिसमें हमारे पास मॉकी इसोफेगस, जीनी पिग, इसमें हम रैट इसोफेगस भी ले सकते हैं, रैट लिप ले सकते हैं, रैट ब्लैडर एंड नॉर्मल ह्यूमन स्किन। तो हमें बताना चाहिए कि हम जौन सा डिजीज़ के लिए हम इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ले रहे हैं ना, उसके लिए हमारे पास जो टिश्यू हम लेंगे दैट वुड बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मंकी इसोफेगस जब हम लेते हैं उसमें हाई टाइटर्स हमें नज़र आते हैं, वो हम पेम्फिगस वल्गैरिस के लिए करते हैं, ह्यूमन स्किन पेम्फिगस फिलीशियस के लिए और रेड ब्लैडर पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने 5 to 10 ml ऑफ द पेशेंट सीरम लेके उसको सेंट्रीफ्यूग किया और फिर उसे हमने जो भी सीरम ऑप्टेन किया उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है, 2 or more slides, एंड वी विल पुट अ टिश्यू 4 to 5 micrometer ऑन दीज स्लाइड्स विच आर फ्रोजन सेक्शंस विच आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जिसके अंदर एंटीजन है और ये नॉन एंटीजन है। अब इसके साथ हमने पेशेंट का सीरम रिएक्ट करना है टू डिटेक्ट द नॉन एंटीबॉडी। तो जब हमने वो स्लाइड्स प्रिपेयर की जिसमें हमने टिश्यू वो सेक्शन रखा था और उसके ऊपर हमने पेशेंट का सीरम डाला, उससे पहले हमने इसको फैन ड्राई किया, फिर उसके बाद हमने उस पर फॉस्फेट बफर्ड सोल्यूशन डाला टू रिमूव द अमोनियम सॉल्ट्स, एंड आफ्टर पुटिंग द फॉस्फेट बफर्ड सोल्यूशन अगेन वी आर गोइंग टू फैन ड्राई इट, देन वी आर गोइंग टू कवर ईच स्लाइड। अभी तक उसके ऊपर सिर्फ टिश्यू है, उसमें हमने फॉस्फेट बफर्ड सोल्यूशन डाला है, उसको एयर ड्राई किया, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर पेशेंट का सीरम डालेंगे और उसको इनक्यूबेट करेंगे एट 37 degrees centigrade फॉर 30 minutes, ताकि उसके पेशेंट की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस एंटीजन्स के साथ अटैच हो जाए। उसके बाद फिर हम दोबारा से उसको हम वॉश करेंगे विद द फॉस्फेट बफर्ड सोल्यूशन 3 times for 10 minutes each एंड देन वी आर गोइंग टू एयर ड्राई इट। हमने ये क्यों डाला, टू रिमूव द अनबाउंड एंटीबॉडीज़, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो क्लियर आउट हो जाए। फिर दोबारा से टू सी के कौन से एंटीबॉडीज़ कहाँ अटैच हुए हैं, हम जो लैब वाले एंटी फ्लोरेसेंट या फ्लोरोक्रोम वाले ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके ऊपर डालेंगे, जिसमें IgG और C3 है, मेनली IgG। फिर उसको दोबारा से हम इनक्यूबेट करेंगे 37 degrees centigrade पे फॉर 30 minutes के लिए। फिर जब उसकी इनक्यूबेशन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा से हम फॉस्फेट बफर्ड सोल्यूशन डालेंगे टू वॉश अवे द अनबाउंड ऑटो एंटीबॉडीज 3 times for 10 minutes each। फिर उसके बाद दोबारा हमने उसको फैन ड्राई किया। अब इसमें ये याद रखना है कि जब हम सीरम डालते हैं हम उसको इनक्यूबेट करते हैं 30 minutes के लिए इन टोटल, लेकिन जब फॉस्फेट बफर्ड सोल्यूशन डालते हैं हम 10 minutes के लिए 3 दफ़ा इसको करते हैं, उसमें हम इनक्यूबेट नहीं करते। फिर फैन ड्राई करेंगे और लास्ट में जब हमारे पास ये सारा रिएक्शन हो चुका होगा, यानी पहले हमने टिश्यू किया, उसके बाद पेशेंट का सीरम डाला, इनक्यूबेट किया, फिर फॉस्फेट बफर्ड सोल्यूशन से अनबाउंड एंटीबॉडीज़ को वॉश किया, एयर ड्राई किया, फिर उसके बाद दोबारा से हमने जो लैब वाले ऑटो एंटीबॉडीज़ थी वो डाली, उसको इनक्यूबेट किया, फिर फॉस्फेट बफर्ड सोल्यूशन डाला, फिर एयर ड्राई किया और फिर आखिर में हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, वी आर गोइंग टू व्यू इट अंडर द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी।